पिछले पाठ में तत्चतुर्विधम कहा गया था, माने तेज जो है वह चार प्रकार का होता है। वे चार प्रकार कौन से हैं? तो पहला बताया गया उद्भूत रूप स्पर्शम। यहाँ पर जो उद्भूत शब्द है उसका अर्थ है, आप याद रखिएगा क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा अभी, तो उद्भूत का अर्थ है प्रत्यक्ष ग्राह्य, जिसका प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण हो उसको हम उद्भूत कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत जिसका प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण न हो उसको हम अनुद्भूत कहते हैं। तो रूप भी जो है, रूप और स्पर्श की खास करके यहाँ पर चर्चा होने वाली है, तो रूप और स्पर्श जो है ये दो प्रकार का होता है, उद्भूत रूप और अनुद्भूत रूप। इसी तरह से उद्भूत स्पर्श और अनुद्भूत स्पर्श, तो जिस रूप का प्रत्यक्ष हो, जिस रूप का साक्षात्कार हो, प्रत्यक्ष अनुभव हो, वह हो गया उद्भूत रूप, और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव न हो वह हो गया अनुद्भूत रूप। ऐसे ही स्पर्श के बारे में भी है कि जिस स्पर्श का साक्षात्कार हो, जिस स्पर्श का अनुभव हो वह हो गया उद्भूत स्पर्श, और जिस स्पर्श का अनुभव न हो वह हो गया अनुद्भूत स्पर्श। तो ये जो चार प्रकार का तेज बताया गया उसमें पहला भेद यही है उद्भूत रूप स्पर्शम, और तेज अपनी ओर से जोड़ लीजिए कि उद्भूत रूप स्पर्शम तेज, ऐसा तेज जिसका रूप भी उद्भूत हो और स्पर्श भी उद्भूत हो, माने ऐसा तेज जिसका रूप और स्पर्श प्रत्यक्ष ग्राह्य हो, प्रत्यक्ष के द्वारा उसका ग्रहण होता हो, उसका अनुभव होता। दूसरा भेद बताया अनुद्भूत रूप स्पर्शम तेज, ऐसा तेज जिसका रूप भी अनुद्भूत है माने प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है, और स्पर्श भी जो है प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है, इस तरह का जो तेज है अनुद्भूत रूप स्पर्श तेज कहलाता है। फिर तीसरा भेद है अनुद्भूत रूप उद्भूत स्पर्शम, ऐसा तेज जिसका कि अनुद्भूत रूप माने रूप तो अनुद्भूत हो, माने रूप जो है वह प्रत्यक्ष ग्राह्य न हो किंतु स्पर्श जो है वह उद्भूत हो, माने स्पर्श प्रत्यक्ष ग्राह्य हो, ऐसा जो तेज है वह तीसरे भेद के अंतर्गत आएगा अनुद्भूत रूप उद्भूत स्पर्शम तेज। फिर चौथा जो है उसमें इसी तरह से है भेद कि उद्भूत रूप अनुद्भूत स्पर्शम च तेज, माने जिसका रूप उद्भूत हो माने जिसका रूप प्रत्यक्ष ग्राही हो, और अनुद्भूत स्पर्शम और स्पर्श जो है जिसका अनुद्भूत हो माने प्रत्यक्ष ग्राही न हो, वह जो तेज है वह चौथे भेद के अंतर्गत आएगा। अब ये जो चार भेद इन्होंने बताए उन चारों भेदों का अब स्वरूप बताएंगे, परिचय बताएंगे। कहा कि तत्र उद्भूत रूप स्पर्शम यथा सौरादि तेज, कहा कि जैसे सौरादि तेज जो होता है माने सूर्य आदि का जो तेज होता है वह प्रथम भेद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वह उद्भूत रूप स्पर्श है, अर्थात सौरादि तेज का सूर्य की जो रोशनी होती है उसको सौर तेज कहेंगे, तो सूर्य की रोशनी में का रूप भी उद्भूत होता है और स्पर्श भी उद्भूत होता है, उसका रूप भी प्रत्यक्ष ग्राही है सूर्य की रोशनी का, और उसका स्पर्श भी हम अनुभव करते हैं। तो इस तरह से सौरादि तेज जो है वह प्रथम भेद के अंतर्गत आता है, उद्भूत रूप स्पर्श तेज के अंतर्गत आता है। और दूसरा भी एक उदाहरण दिया पिंडी भूतम तेजो भन्यादिकम, ताकि पृथ्वी पर जो आग का गोला होता है वह भी जो पिंडीभूत जो तेज है माने आग का गोला जो है वह भी जो है इसी भेद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसमें भी रूप दिखता है और उसका भी जो है स्पर्श होता है। सुवर्णम तु हाँ, जो मैंने कहा ना कि एक आपके लिए नई बात होगी, ये गोल्ड को जो है, सोने को जो है भी हम लोग अजी ये मतलब न्याय दर्शन वाले अग्नि मानते हैं, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर खास बताया गया। इसमें खास ये है कि बहनी का जो स्वरूप होता है वह तो भास्कर ये अभास्वर शुक्ल होता है, जो मैंने कहा ना अप्रकाशक शुक्ल वर्ण होता है, लेकिन सोना देखने में कैसा लगता है, पीला लगता है। इसी तरह से बहनी का जो स्पर्श है वह तो उष्ण स्पर्श होता है, गर्म लगता है, लेकिन सोना को जो छूते हैं तो उसमें तो उष्ण स्पर्श होता नहीं है, गर्म लगता नहीं है, तो बिल्कुल ये जो सोना जो है ना इसमें विपरीत बात है। तेज से बिल्कुल विपरीत दिखता है, क्योंकि तेज का वर्ण है अभास्वर शुक्ल, और जबकि ये दिखता है पीत। ऐसे ही जो है अग्नि का स्पर्श जो है वह है उष्ण स्पर्श, लेकिन इसका जो स्पर्श होता है वो अनुष्णाशित होता है। अनुष्णाशित मतलब न उष्ण होता है और न शीत होता है, तो इस तरह का स्पर्श है। तो फिर भी स्वर्ण को जो है हम बहनी मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अलग से इन्होंने बताने का प्रयास किया है सुवर्ण के बारे में, कहा कि सुवर्णन्तु उद्भूत अभिभूत रूप स्पर्शम, कहा कि सुवर्ण नाम का जो तेज है ये तो एक विचित्र है, विलक्षण है, थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो रूप और स्पर्श है वह क्या है, उद्भूत अभिभूत रूप स्पर्श है, माने रूप और स्पर्श इसका उद्भूत भी है और अभिभूत भी है। उद्भूत है मतलब प्रत्यक्ष ग्राह्य भी है इसका रूप स्पर्श, और अभिभूत है। ये अभिभूत क्या होता है, कोई बलवान अगर सामने में खड़ा हो जाए ना, तो क्या होता है उससे कम बल वाला जो व्यक्ति है उसका पावर सीज हो जाता है, उसका पावर खत्म हो जाता है। तो बलवान के सम्मुख रहने पर पावर माने शक्ति जो है का जो क्षीण हो जाना, जिसका शक्ति क्षीण हो जाए उसको हम अभिभूत कहते हैं। आया समझ में? अब जैसे मान लीजिए कुत्ता जो है बिल्ली के लिए दम से जो है बड़ा पावरफुल है, लेकिन उस वहीं पर जो है बाघ आ जावे तो फिर क्या होगा, कुत्ते की शक्ति क्षीण हो जाएगी बाघ के डर से, और वो कुत्ता जो है बिल्ली को कुछ नहीं कहेगा। तो उसका क्या हुआ, कुत्ता का जो बल है वह वहां पर अभिभूत हो गया, माने बलवान के सामने आ जाने पर, सामने पड़ने पर उसका बल जो है क्षीण हो गया। तो बल का क्षीण हो जाना जो है, शक्ति का क्षीण हो जाना जो है वही है अभिभवन, और जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है बलवान के आने पर उसी को हम कहते हैं अभिभूत। तो सुवर्ण का जो रूप और स्पर्श है वह उद्भूत रूप स्पर्श भी होता है उसका, किंतु अभिभूत भी होता है। यही कारण है कि उसको बाहनी हम इसलिए मानते हैं सुवर्ण को, क्योंकि उसका रूप और स्पर्श उद्भूत होता है, और वह शुक्ल क्यों नहीं दिखता है, उसका स्पर्श जो है उष्ण क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अभिभूत रूप स्पर्श है, उसका जो रूप है वह अभिभूत हो जाता है, और स्पर्श भी जो है उसका अभिभूत हो जाता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए कैसे होता है कि स्वर्ण जो है वो तेजस है, माने तेज से बना हुआ है, लेकिन उसमें पृथ्वी का भी तत्व होता है, तो पृथ्वी का जो रूप है और पृथ्वी का जो स्पर्श है वो उसके बहनी के रूप और स्पर्श की अपेक्षा बलवान है, और पृथ्वी के रूप स्पर्श के कारण जो है तेज का जो रूप और स्पर्श है वह अभिभूत हो जाता है, वह पराभूत हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, इसीलिए देखने में वो पीला दिखता है, क्योंकि पृथ्वी का जो रूप है वह रूप दिखता है, बलवान जो रहे वही दिखता है। इसी तरह से पृथ्वी का जो स्पर्श है अनुष्णाशित स्पर्श, वही स्पर्श जो है बहनी का भी होता है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ कहा कि सुवर्णन्तु उद्भूत अभिभूत रूप स्पर्शम, सुवर्ण का जो रूप और स्पर्श है वह उद्भूत अभिभूत रूप स्पर्श होता है। क्लियर हो गया? नौ अनुद्भूत रूप स्पर्शम, इसको जो है हम सुवर्ण को अनुद्भूत रूप स्पर्श के भेद में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर अनुद्भूत रूप स्पर्श के अंतर्गत रखेंगे तो अनुद्भूत रूप का मतलब क्या हुआ, जिसका रूप प्रत्यक्ष ग्राह्य न हो, लेकिन बहनी ये जो स्वर्ण जो है इसका तो रूप चाक्षुष होता है, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होता है, इसीलिए हम इसको अनुद्भूत रूप नहीं कहेंगे। ऐसे ही इसको हम अनुद्भूत स्पर्श भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका स्पर्श भी त्वगिंद्रिय के द्वारा होता है, सोने का स्पर्श तो होता है, तो स्पर्श भी होता है और रूप चाक्षुष जो है ग्रहण भी होता है इसका रूप का, इसलिए हम इसको उद्भूत रूप स्पर्श वाला ही मानेंगे। हाँ, चूंकि उसके अगेंस्ट जो है रूप दिखता है, उसके अगेंस्ट स्पर्श होता है, इसलिए इसको हम अभिभूत करके कहते हैं। तो वही कहा इन्होंने तत् अनुद्भूत रूपत्वे, अगर हम सुवर्ण में अनुद्भूत रूपत्व मानेंगे तो अचाक्षुषम स्यात्, फिर वह अचाक्षुष हो जाएगा, चक्षुरिंद्री के द्वारा वह गृहित नहीं होगा। इसी तरह से अनुद्भूत स्पर्शत्व, और अगर हम स्पर्श को अनुद्भूत के अंतर्गत रखते हैं तो फिर त्वचा न गृहीत, फिर त्वगेन्द्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होगा। इसलिए हम इस मैं सुवर्ण का जो रूप स्पर्श है उसको अनुद्भूत नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष भी होता है और स्पर्शन प्रत्यक्ष भी होता है, इसलिए वह उद्भूत रूप स्पर्श वाला है। हाँ, अभिभूत जरूर होता है उसका रूप स्पर्श। वो अभिभूत कैसे होता है तो आगे बताते हैं कि अभिभवस्तु, इसका एक पर्यायवाची शब्द संस्कृत में अगर कहें तो तिरोभाव कह सकते हैं। तो अभिभव माने तिरोभाव, माने उसको वही कमजोर पर जाना। तो अभिभवस्तु बलवत् सजातीयेन पार्थिव रूपेण स्पर्शेन च कृतः, कहा कि इसका अभिभव हो जाता है, तेज का जो ये स्वर्ण का जो रूप और स्पर्श है वह उसका अभिभव होता है, उसका पराभव होता है, उसका तिरोभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि बलवत् उसके सामने जो है ना, बलवान जो सजातीय है, क्योंकि ये जो रूप और स्पर्श जो है ये दोनों गुण हैं, और पृथ्वी में जो रहने वाला रूप और स्पर्श है वो भी गुण है, और बहनी में रहने वाला जो रूप स्पर्श है वो भी गुण है, तो गुण का गुण जो है वो सजातीय होगा ना। तो तेजस रूप और स्पर्श का सजातीय कौन होगा? यहाँ पार्थिव रूप और पार्थिव स्पर्श जो होगा वो सजातीय होगा। तो बलवान सजातीय जो पार्थिव रूप है, इसी तरह से बलवान सजातीय माने समान, तो क्योंकि दोनों गुण है तो गुणत्वेन दोनों सजातीय हो गए। तो बलवान जो सजातीय पार्थिव रूप है और बलवान जो सजातीय पार्थिव स्पर्श है, उसके कारण से तेज का जो रूप और स्पर्श है वह अभिभूत हो जाता है, वह तिरोभूत हो जाता है। इस तरह से प्रथम भेद के बारे में इन्होंने बताया। अब दूसरा भेद जो था, अनुद्भूत रूप स्पर्शम तेजः, माने ऐसा तेज जिसका रूप और स्पर्श अनुद्भूत हो, माने इंद्रिय प्रत्यक्ष से ग्राह्य न हो या इंद्रिय से ग्राह्य न हो। इसका उदाहरण दिया यथा चक्षुरिंद्रियम, चक्षुरिंद्रिय जो है वह अनुद्भूत रूप स्पर्श वाला है, उसका ना रूप दिखाई देता है चक्षुरिंद्रिय का। मैंने बताया था ना कि जो आँख दिखती है वो आँख नहीं होती है, आँख तो कृष्ण ताराग्र बरती है, वह जो आँख का जो गोलक है उस गोलक के अंतर्गत जो सफेद वाला अंश है उसके बीच में जो काला वाला अंश, भूरा वाला अंश है, और भूरे वाले अंश के बीच में जो काला वाला वो तारा टाइप जो है गोलक छोटा सा है, उसके अंदर में जो है ना चक्षुरिंद्रिय होती है। तो उसको वह जो है अनुद्भूत रूप है और उसका स्पर्श भी जो है वह नहीं संभव है, क्योंकि वो भीतर में रहता है। इस तरह से इसका उदाहरण दिया चक्षुरिंद्रिय जो तेज है, तेजस चीज है या अनुद्भूत रूप स्पर्श वाला है। फिर तीसरा कहा अनुद्भूत रूपोद्भूत स्पर्श, एक ऐसा भी तेज होता है जिसका कि रूप भी अनुद्भूत, रूप अनुद्भूत होता है माने इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, किंतु स्पर्श जो है वह उद्भूत होता है। इसका उदाहरण दिया यथा तप्त बारिस्थम तेजा, बारी कहते हैं जल को, तप्त बारी माने गर्म जल, तो गर्म जल में भी रहने वाला जो तेज है वह तेज तीसरे भेद के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस तेज का रूप तो नहीं दिखाई देता किंतु उसका स्पर्श जो है वह तो होता है। इसी तरह से चौथा भेद है उद्भूत रूप अनुद्भूत स्पर्शम तेज, ऐसा तेज जिसका रूप उद्भूत हो किंतु स्पर्श अनुद्भूत हो, जैसे तथा प्रदीप प्रभा मंडलम, दीपक से जो प्रभा निकलती है और उस प्रभा का जो एक मंडल बनता है, उस प्रभा मंडल का रूप तो उद्भूत होता है, वो रूप तो दिखता है किंतु उसका स्पर्श का अनुभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए दीपक अगर जला लेते हैं तो उसकी रोशनी आपके शरीर पर तो पड़ेगी, लेकिन रोशनी पड़ेगी उसका जो है ना, उस स्पर्श का, रोशनी के स्पर्श का अनुभव नहीं होता है, इसलिए उसको उद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श वाला तेज जो है माना गया है। इस तरह से तेज का जो चौथा भेद है उसको भी उदाहरण पूर्वक यहाँ पर बताया गया। अब इसके बाद नंबर आता है पृथ्वी जल तेज के बाद चौथा नंबर आता है वायु का। तो वायु के बारे में भी जो है यहाँ हमें पढ़ना है, इसका भी लक्षण उसी तरह से वायुत्व अभिसंबंधवान वायु, वायुत्व का संबंध जिसमें हो उसे हम वायु कहते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि संबंधवान नहीं कहा, अभिसंबंधवान कहा। यह अभिसंबंधवान, अभिसंबंध का मतलब होता है अभिमत संबंध। तो वायुत्व जो जाति है उसका जो वायु के साथ अभिमत संबंध होगा वह होगा समवाय संबंध, ठीक है। तो वायुत्व के साथ जिसका समवाय संबंध हो उसको हम वायु कहते हैं, ठीक है। अथवा ये कह लीजिए समवाय संबंध से वायुत्व जाति का जो आश्रय हो उसे हम वायु कहते हैं। इस तरह से वायु का लक्षण बताया गया। फिर कहते हैं कि इसके भी चार भेद होते हैं, त्वक इंद्रिय प्राण वातादि प्रभेद। त्वक इंद्रिय के रूप में होता है, प्राण के रूप में होता है, और बात माने वायु, बात आदि अनेकों प्रकार। ये के रामायण में सुना होगा 49 पवन है, तो वायु के बहुत सारे भेद हैं। तो उन सब भेदों में जो है ये वायु जो है यह ग्राह्य होता है। फिर इसमें भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे बाकी में थे। कहते हैं कि स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग, इतने प्रकार के जो हैं इस वायु में गुण होते हैं। और अब ये वायु जो है या इसका तो प्रत्यक्ष होता नहीं है, वायु तो दिखती नहीं है, तो फिर कैसे इस की सिद्धि होगी। तो कहा कि अनुमान के द्वारा इसकी सिद्धि होती है। तो वही आगे कहा कि सच स्पर्शादि अनुमेय, वह वायु जो है वह स्पर्श आदि के द्वारा अनुमेय होता है, वह जो है चक्षुरिंद्री के द्वारा ग्राह्य नहीं होता। तथा ही अब इस तरह से यहाँ पर अब अनुमान बताते हैं कि योयम वायुर्वाति, ये जो वायु बह रही है वह अनुष्ण असीत स्पर्श उपलभ्यते। इसमें जो इसका जब वायु वायु बहती है ये हम कैसे समझते हैं, जब उसके साथ हमारे शरीर का स्पर्श होता है तो समझ में आता है कि हवा बह रही है। अगर स्पर्श न हो तो देखने से थोड़े पता चलेगा। तो वही कहते हैं कि योयम वायुर्वाति, यो जो ये जो वायु बह रही है उसमें जो अनुष्ण और असीत स्पर्श उपलब्ध हो रहा है, अनुष्ण असीत स्पर्श समझते, अनुष्णासित जो मैंने कहा था जिसका स्पर्श न गर्म हो और न ठंडा हो उसको हम अनुष्णासित स्पर्श वाला कहते हैं। तो वायु का भी जो स्पर्श है वह अनुष्णासित स्पर्श होता है। ऐसा है कि बहनी का स्पर्श जो है वह उष्ण स्पर्श होता है, और जल का जो स्पर्श है वह शीत स्पर्श होता है, लेकिन वायु का जो स्पर्श है वह अनुष्णासित स्पर्श होता है। और इस तरह से ये जो वायु बह रही है उसमें जो उसके साथ जो अनुष्णासित स्पर्श उपलब्ध हो रहा है माने उस स्पर्श का जो अनुभव हो रहा है, सह गुणत्वात्, वह गुण के होने से वायु में अनुष्णासित स्पर्श नाम का जो है वह गुण रहता है। और गुणिनम अंतरे न अनुपपद्यमान, और जो गुण रहता है वो बिना गुणी के तो रहता नहीं है। ये आप पहले समझ चुके हैं कि द्रव्य में ही गुण रहता है। तो यह जो अनुष्णासित स्पर्श नाम का गुण है वायु में, ये बिना गुणी के रह नहीं सकता, किसी गुणी में ही रहेगा। वह गुणी कौन है, तो वायु है। इसलिए कहा कि गुणिनम अनुमापयति, गुणी को अनुमेय सिद्ध करता है माने वायु को अनुमेय सिद्ध करता है। वह जो गुणी है वह वायु ही है, वह वायु ही है। पृथ्वी आदि अनुपलब्ध है, क्योंकि पृथ्वी आदि जो गुणी है माने द्रव्य है उसकी वहाँ पर अनुपलब्धि रहती है। वायु पृथ्वी व्यतिरेके न अनुष्णासित स्पर्श भावात, कहा कि दो ही ऐसे हैं वायु और पृथ्वी जिसमें अनुष्णासित स्पर्श होता है। स्वच द्विविधो, और वह वायु दो प्रकार की होती है, नित्य अनित्य भेदात, और नित्य परमाणु रूप वायु और अनित्य कार्य रूप। तो इस तरह से यहाँ पर वायु का भी प्रकरण संपन्न होता है।